सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम जी, आज मुझे बड़ी खुशी होती है इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोफेसर इकरार अहमद ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। प्रोफेसर साहब से हम पहले भी बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में भी एज वेल एज एजुकेशन में भी। जैसे मैंने बताया था पहले भी, इन्होंने फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी वाकई एक पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बल्कि दुनिया में भी नामवर हो चुकी है। इनकी यहाँ इनोवेशन और इनकी स्टूडेंट की अर्नेस्टनेस जो मैंने देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है और ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो मैंने इनसे इल्तजा की कि जी अब हम एक हायर एजुकेशन पर भी बात कर लें। हमारे पास माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं और हम हमेशा कोशिश में हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर करें। तो आज प्रोफेसर साहब से डिस्कशन ये होगी कि हम कैसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं, क्या इस निज़ाम में हम चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह हम इसको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले भी बात की है, हम सब का ये अकीदा है और ये दुनिया ने भी सीख लिया है कि एक मुल्क में उसकी तरक्की जो सी है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्ता होती है और बहुत गहरा ताल्लुक होता है यूनिवर्सिटीज़ का। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतना अच्छा मुल्क होगा, उतना मकबूल मुल्क होगा। तो आइए प्रोफेसर साहब से बात शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब बताइए कि मेरा ख्याल है हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले चंद सालों में तरक्की तो काफ़ी की है, आप कैसे देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री?
देखिए, ये पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के जो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं उसके मुताबिक हमारी इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क से या हमारे लेवल के जितने भी कंट्रियों से बहुत कम है। तो इसलिए ये ज़रूरत तो ज़रूर है कि हम यूनिवर्सिटीज़ नए अदारे बनाएं, जो एग्जिस्टिंग अदारे हैं उनकी कैपेसिटी जो है बिल्ड करें, ताकि जो एक गिवन एज के बच्चे हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए उनको स्पेस मिले। लेकिन ये अदारे जो बनाते वक्त एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अदारे का मतलब बिल्डिंग्स नहीं है, अदारे का मतलब एक अनेक्टमेंट नहीं है। ये अदारे जो हैं इनका सबसे बड़ा जो अहम एलिमेंट है वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। तो हमें यूनिवर्सिटी बनाने से पहले ये ज़रूर सोचना होगा कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ को मैन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है या नहीं,
यानी कि प्रोफेसर्स
मौजूद। प्रोफेसर्स तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी सप्लाई एंड डिमांड की क्वेश्चन कुछ ऐसी है कि अच्छे जो ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। और इस वक्त जितनी यूनिवर्सिटी बनी हुई है उनमें अच्छी फैकल्टी जो है उसको अट्रैक्ट करना, रिटेन करना एक चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा एक और जो अदारे बने उनमें थोड़ा लॉपसाइडेड है विजन, के अदारे हमने बड़े शहरों में बना दिए जबकि यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं वो तो सैटेलाइट होते हैं डेवलपमेंट के, जहाँ भी बन जाए वहाँ शहर आबाद हो जाते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज नॉर्थ अमेरिका में, कि वो जहाँ भी यूनिवर्सिटी बनी वहाँ पे शहर बन गए और वहाँ पे इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पे बिजनेसेस आ गए। तो यूनिवर्सिटी एक्चुअली डेवलपमेंट कैटलिस्ट है। तो हम इसको यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं इस तरह से कि उसको बड़े शहरों में होना चाहिए। अब इसको बड़े शहरों में बनाने की एक वजह शायद ये भी है कि वो जो उसके रिक्वायर्ड ह्यूमन सोर्स है वो छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है। नुकसान इसका ये हो रहा है कि बड़े शहरों में आप इतने इदारे बन गए कि छोटे शहरों में अगर आप बनाए भी यूनिवर्सिटी तो बंदे वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े शहरों में नौकरियाँ मैसर हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है इस वक्त काफ़ी आप कह लें कि स्ट्रगल से गुजर रहा है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी हैं, प्रोविंशियल भी हैं, सपोर्ट है गवर्नमेंट्स की, लेकिन गवर्नमेंट्स कैन ओनली डू एज मच एज इज अवेलेबल।
ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है जो मैंने पहले नहीं सोचा हुआ था कि यूनिवर्सिटी, देखें ना आपकी यूनिवर्सिटी में जो मैंने आज आपसे पूछा, आपने मुझे बताया 24,000 स्टूडेंट है।
जी बिल्कुल,
ये तो मतलब एक छोटा शहर अपने आप ही बन चुका है। 24,000 स्टूडेंट है, कुछ 4,000 आपके पास एम्प्लॉइज होंगे,
बिल्कुल
तो 30,000 तो हो गया, अच्छा खासा छोटा टाउन बन गया।
जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी टाउन है।
ठीक है, तो अब फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में 10 मिलियन में ठीक है, बट आपको एक और चीज़ से वो कन्फ्रंट करना पड़ रहा है कि आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि फैसलाबाद में कॉस्ट ज़्यादा है।
जी बिल्कुल,
छोटे शहर में होते तो
मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत बढ़ती है।
बिल्कुल, अब मुझे एक बात बताएं कि आप एक यूनिवर्सिटी को कैसे देखते हैं, आपके दिमाग में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है?
मेरे दिमाग में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि ये एक इकोसिस्टम है जिसमें आप नर्चर करते हैं ह्यूमन मेंटल ग्रोथ, उसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, ये इकोसिस्टम के दो लाइफ पार्टनर हैं। और अगर स्टूडेंट जो है वो भी जो है इनक्विजिटिव है, और टीचर भी जो है वो भी टॉलरेंट है और रिसेप्टिव है, और टीचर जो है वो स्किल उसके पास है और उसके पास नॉलेज है, और वो जो स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रमोट कर रहा है, तो फिर क्या होगा यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से आइडियाज़ जनरेट होंगे, यूनिवर्सिटी से एम्पिरिकल एविडेंस जनरेट होगी, उस एम्पिरिकल एविडेंस से नॉलेज की बॉडी ग्रो करेगी, जब नॉलेज की बॉडी ग्रो करेगी तो उससे फिर टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, उससे फिर पॉलिसीज भी बनेंगी, उससे फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, उससे इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, उससे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आपने इतनी सी बड़ी बातें कर दी, इस पर तो मेरे ख्याल 4 घंटे लग जाएंगे। इकोसिस्टम पहले आपने कहा, अब इकोसिस्टम मुझे बताएं कि आप इकोसिस्टम में क्या देखते हैं? एक तो तालिबे इल्म है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, पर ये क्या हमारी सोसाइटी के इकोसिस्टम से बाहर बैठे हुए?
हमारी सोसाइटी में इस इकोसिस्टम के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वीक है, या वो हमारे पास बैगेज ऐसा है यूनिवर्सिटियों को, जब से हमने पॉजिटिवली देखना शुरू किया उससे पहले का एलिमेंट भी मौजूद है। मसलन ये अदारा जो 1906 में बना है, इसकी बड़ी इंप्रेसिव हिस्ट्री है, लेकिन 1906 से लेके एट एनी गिवन टाइम इसमें तकरीबन 30 इयर्स का एक एलिमेंट मौजूद होता है, 30 से 35 साल एक बंदे की वर्किंग लाइफ है।
वेरी इंटरेस्टिंग,
ठीक है। तो 30 से 35 साल का एक ओवरलैप चल रहा होता है, तो 1 साल से लेके 35 साल का ओवरलैप चल रहा है। तो आप अगर आए वन फाइन डे मॉर्निंग, आपको ये असाइनमेंट दे दी जाती है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप जो 35 साल पुराना है और 1 साल पुराना, सबको आप एक ही एंगल से देख लें या गुजार दें, या एक ही किस्म की उनकी आउटपुट आप मेंटेन कर लें, मुमकिन नहीं है।
वेरी इंटरेस्टिंग।
तो ये इकोसिस्टम इस तरह से, इसकी इकोसिस्टम की एज है, इसमें स्केल की वेरिएशन है, इसमें जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, इसमें डिसिप्लिन की वेरिएशन है। तो मैं इसको जब इकोसिस्टम कहता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बॉडी, जिसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी हैं, इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें बायोस्फीयर भी है, और फिर इस इकोसिस्टम के साथ कोई आप ऐसे लैंडमार्क भी हैं, वो लैंडमार्क जो हैं इसके अलुमनाई भी हो सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, इसकी कोई अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग भी हो सकती है, आर्किटेक्चर भी हो सकता है।
तो इसमें आप टीचिंग को कहाँ प्लेस करते हैं? क्योंकि मेरा नज़रिया ये है, जो हम देखते हैं, हम तो सोचते हैं यूनिवर्सिटी को सिर्फ एज अ टीचिंग प्लेस।
मैं समझता हूँ टीचिंग इज ओनली ए ट्रांजिटरी फंक्शन, इट इज अ पार्शियल फंक्शन। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यूनिवर्सिटीज को टीचिंग प्लेस देखा जाता है, जबकि इसको लर्निंग प्लेस देखा जाना चाहिए। सो टीचिंग इज ओनली पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, इट्स नॉट द होल लर्निंग। होल लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंशियल है, और वो हैंड्स ऑन भी है, और वो उसमें एक चैलेंज का एलिमेंट भी है। तो ये जो टीचिंग है वो तो यूजुअली सिलेबस बेस्ड होती है।
तो मुझे जरा इस पे वजाहत करें, टीचिंग, लर्निंग, नॉलेज, आपने तीन लफ्ज इस्तेमाल किए, और तीनों लफ्ज मुझे तो बड़े इंट्रीक कर रहे हैं इस वक्त आपकी बातें सुन के, और मैं इन पर गौर करने की कोशिश करूँ। जरा इन पर पहलू, इन पर तीनों पे जरा कुछ रोशनी डालें।
देखिए टीचिंग जो है ना वो तो एक पेडागॉजिक प्रोसेस है, दुनिया में वो एक करिकुलम ओवरऑल डिवाइस होता है। करिकुलम में आप सिलेबस बनाते हैं और आपने स्ट्रक्चर किए हुए हैं नॉलेज के स्ट्रीम्स, वो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिसिन के हैं, जियोलॉजी के हैं, एस्ट्रोनॉमी के हैं, फिजिक्स के हैं, सो ऑन। हमारे यहाँ इस वक्त 160 डिग्रियाँ हैं, हमें तकरीबन 45 डिसिप्लिन है। तो टीचिंग तो आपने वो करिकुलम और सिलेबस के में रह के एक टाइम फ्रेम में, एक आपका एनुअल साइकिल है, एक डिग्री का टाइम फ्रेम है, तो उसमें रह के आप वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पे बच्चे को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। उसमें वो प्रोग्रेसिवली एक फाउंडेशन से गुजरता है, फिर पिरामिड करता है और किसी एक स्ट्रीम।
तो लर्निंग कहाँ जाती है?
लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आप यहाँ पे उसको लर्निंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप उसको उसको एक्सपीरियंस देते हैं,
मोटिवेशन
देते हैं, हैंड्स ऑन देते हैं, आप उसको टूल्स।
तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम लर्नर्स बना रहा है या सिर्फ डिग्री होल्डर्स बना रहा है?
अभी लर्नर जिस लेवल के बनने चाहिए वो नहीं बन रहे। वैसे तो ये है कि चूंकि हमारे पास नंबर इतने ज़्यादा हैं दैट यू विल गेट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बेल शेप कर्व में 5% तो बहुत सुपीरियर मटेरियल आपको मिल ही जाएगा, और वो हैं, वो ठीक काम कर,
वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट,
वो तो हैं ही, लेकिन मजा तो तब है कि आपका जो बेल शेप कर्व है वो राइट को
شفٹ کریں
شفٹ کریں
ویری گڈ پوائنٹ ویری گڈ پوائنٹ وہ آپ کے خیال میں ابھی
وہ رائٹ شفٹ نہیں ہے
وہاں نہیں گیا جہاں
وہ نارمل نارمل کر بھی ہے ابھی آپ شاید لیفٹ میں ابھی
آپ جہاں اس کو لے جانا چاہتے ہیں رائٹ ورڈ اور بھی
نہیں رائٹ رائٹ ورڈ ابھی پوری طرح سے کبھی نہیں گیا یہاں پہ کافی پروگرس ہے جو آپ کی پرفارمنس انڈیکیٹر یا رینکنگ وغیرہ کے میکنزم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے انکرجنگ ہیں حوصلہ افزا ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ کو اس کو موو کرنا چاہیے یا کر رہا ہے
اب لرننگ کے لیے جب آپ اسٹوڈنٹ کو فار ایگزامپل آپ جو اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں آپ ان کو لائف لانگ لرننگ کے لیے کیا مطلب ٹولز دیتے ہیں اور کیا انسینٹیو دیتے ہیں
دیکھیے ہم ایک پروفیشنل اسکول ہے برانڈیڈ ایز ایگریکلچر بٹ وی آر اے کمپریہنسو اسکول آلسو تو کمپریہنسو اسکول بینگ کمپریہنسو اسکول ہم ہر بچے کو سائنس کی پوری ایکسپوجر ہم ہر بچے کو آرٹس کی ایکسپوجر پوری دے رہے ہیں ہم ہر بچے کو سلیبس کے علاوہ انگیجمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اچھا تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کو اور اسپورٹس کی اپرچونیٹیز ہیں تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ اتنا ویل راؤنڈیڈ ہو کہ جب اس یہ اپنے پریکٹیکل لائف میں جائے تو یہ وہاں پہ وہ سب کتاب کا پڑھا ہوا سبق یاد نہ کرے بلکہ وہ اس وقت سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو انیبل کریں یا رسپانڈ کریں
یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی آپ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ہولسٹک پروسیس جس کے اندر ہم نے بندے کے ہر پہلو کو صرف یہ نہیں کہ اس کو ڈگری پکڑانی ہے ہم نے اس کو اسپورٹ فیلڈ ہم نے اس کو باقی اس کے دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اس کو پڑھنے کا انداز اس کا لرننگ کا انداز اس کا بات کرنے کا انداز سب کو چینج کرنا ہے اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ ویلنگٹن نے کہا تھا نپولین کو بیٹل آف واٹرلو میں ڈیفیٹ کر کے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے جیتے اس نے کہا وی ون دا بیٹل آف واٹرلو آن دا پلیئنگ فیلڈ آف ایٹون بہت بڑی بات کہہ گیا
اسکول میں جیتے
اس نے کہا جی ہم پلیئنگ فیلڈ پہ جیتے کیونکہ ہم نے وہاں ان کو سکھا دیا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا
کمپیٹ کیسے اچھا وہ اس میں کمپٹیشن کے ایک اسپرٹ بہت ضروری ہے آپ لے جائیں گے ان کو فیلڈ میں تو کمپٹیشن آئے گا نا یہ گریڈ لینا کافی کمپٹیشن نہیں ہے
اچھا مجھے یاد ہے کرار صاحب جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو ماشاء اللہ وہ بڑی ڈبیٹس ہوتی تھی ڈرامے ہوتے تھے یہ وہ میرا خیال ہے کچھ کم ہو گئے یا دوبارہ واپس آ گئے
دیکھیے میرے یہاں پہ کیمپس پہ تو ضرورت سے شاید زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ آن این ایوریج جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ایونٹس ہیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں چار پانچ نہیں ہوتے ابھی میں یہاں سے آپ کو جانے سے پہلے لے کے جاؤں گا دو تو یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ڈبیٹ کا ایونٹ میوزک کا ایونٹ اسلامی لیکچر کا ایونٹ یہاں پہ اخلاقیات کا ایونٹ اور پھر ہماری ٹیمیں جو دوسری یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں ملک سے باہر جا رہی ہیں ملک سے باہر بچے یہاں
پھر آپ نے بتایا آپ کے سیمینار سیریز ماشاء اللہ
اور سیمینار سیریز میں تو ذرا پروفیشنل ٹچ بھی ہو جاتا ہے نا یہ ہم ان کو پروفیشنل ٹچ کے علاوہ تھوڑا فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتے ہیں
اچھا مجھے یہ بات بتائیں چلے یہ تو آپ کر رہے ہیں ہماری باقی یونیورسٹیز میں کیسا نظام ہے ان چیزوں کا ایک ٹیچنگ کا دوسرا لرننگ کا جو آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں
میں کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں
کسی پہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی بٹ ویسے ہم نظام کی بات کریں
دیکھیں وہ تو پھر آؤٹ پٹ بتا رہی ہے نا کہ ابھی ہمارا ہیومر سورس جو ہے وہ جس طرح سے اس کو افیکٹو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا اور اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوگا جب تک یونیورسٹی افیکٹو نہیں ہوگی اگر یونیورسٹیز افیکٹو ہوں گی تو یہ نظام جو ہے افیکٹو ہو جائے گا
اچھا مجھے اب دوسری طرف چلیں آپ نے جو بڑے بڑے لفظ استعمال کیے جن پہ میں ابھی تک ذرا تھوڑا سا اٹکا ہوا ہوں آپ نے نالج کی بات کی تھی اسی چیز اب ٹیچنگ میں سمجھ گیا آپ نے سمجھا دیا لرننگ کا کیا مطلب نالج کا کیا مطلب ہے نالج کیا ہے
دیکھیں نالج جو ہے یہ گرو کرتا ہے ود ریسرچ ادر وائز آپ تو وہ یو نو یو آر جسٹ پٹنگ ریپیٹنگ وٹ از نون تو نالج کے ریسرچ اور اسی لیے یونیورسٹی جو ہے وہ سگنیفیکینٹ ہے یونیورسٹی جو ہے وہ پہچانی جانی چاہیے اس کی ریسرچ انگیجمنٹ سے ریسرچ انگیجمنٹ میں دیکھیں ریسرچ میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ کام کرو اس کو آئیڈیاز جو ہیں وہ ایکسپوجر سے آتے ہیں چیلنج سے آتے ہیں اس کو سوسائٹی کے مسائل دیکھ کے بھی آئیڈیاز آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنے پی ایس سے ڈسکشن سے آتے اس کو ریویو کرنے سے آئیڈیاز آتے
جیسے کہ نیوٹن ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہو تو سر پہ سیب گرا تو اس نے گریویٹی دریافت کر دی
اس لیے یہ اور پھر وہ اس آئیڈیا کو آپ نے گزارنا ہے امپیریکل پروسیس سے اینڈ دین ٹو پیئر ریویو یو نو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ وٹ ادرز تھنک اباؤٹ یور آئیڈیا تو اس کو پیئر ریویو بھی ہونا چاہیے تو پھر آپ ہم سمجھیں کہ باڈی آف نالج گرو کر رہی ہے اور باڈی آف نالج گرو کرے گی تو پھر یقیناً اس کے اسپین آف ہوں گے وہ اسپین آف جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس سے انوویشن بھی ہوتی ہے
یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی میں سوچ میں ابھی آپ جب بات کر رہے تھے مجھے سڈنلی خیال آیا کہ امریکہ کی طرف اگر میں نظر ڈالوں تو ہر یونیورسٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز منسلک ہے फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी शिकागो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स लेस अफेयर उसके साथ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखे तो वो कुछ और है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में है, यू नो हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई फील्ड है, क्लीवलैंड को देखे वो देखे वो जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन में है, आई मीन हर यूनिवर्सिटी का कोई होता है और उसका कोई ना कोई हाइपोथेसिस थीसिस होता है। हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम है कि नहीं?
नहीं, अभी यहाँ पे जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो किसी हद तक ये क्लेम कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उस पुराने ब्रिटिश ईरा में पंजाब यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे क्लोन हुई है। जनरल यूनिवर्सिटी बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल पैटर्न है उसके ऊपर है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो जनरल स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जनरल स्ट्रीम ऑफ नॉलेज जो है उनको रेलेवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एजुकेशन को जो है वो रेलेवेंट बनाएँ विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। टेक्नोलॉजी अगर हमारे लिए इस वक्त सिग्निफिकेंट है तो टेक्नोलॉजी की बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम सोशल वैल्यूज भी उतनी इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे एक और बताइए कि अब ये जो नॉलेज है, आप नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी नॉलेज क्रिएट कर रही है, इस नॉलेज का कंज्यूमर कौन है?
हम चूंकि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हमारा कंज्यूमर जो है वो तो इंडस्ट्री है।
आपका तो काश्तकार
है? काश्तकार है, ठीक है ना। तो उसको हम अपना जो नॉलेज है डिसेमिनेट करने के लिए भी पूरी एफर्ट करते हैं, और हम उसके बहुत सारे आउटरीच के मैकेनिज्म जो अडॉप्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो हमारा नॉलेज जो है वो वन वे आर दी अदर ट्रिकल डाउन होता है।
एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बट इसको एक और तरीके से अगर देखें, जैसे कि मैं देखता हूँ कि वहाँ अपना अमरीका में फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो नॉलेज निकलती है यूनिवर्सिटीज़ की, अब कई यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएटेड हैं विद दिस प्रोग्राम और दैट प्रोग्राम, अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे बात करती है, इंडस्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली वो स्टैनफोर्ड के साथ एसोसिएटेड है, बायोटेक्नोलॉजी जो उनसी है वो MIT या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब हमारी माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ वहाँ वो एक आइडिया के साथ मुंजमद हो जाती है, जम जाती है, ठीक है, उस आइडिया को फिर वो एक्सप्लॉइट करती रहती है, उनके प्रोफेसर वहाँ जम जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से नॉलेज बनती है। पर नॉलेज जो मैं देखता हूँ वो जब एक किस्म की नेटवर्क और साइटेशन कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, क्या आप इसकी अहमियत समझते हैं? जैसे कि मैं देखता हूँ हमारे जो इकोनॉमिस्ट की है वो एक साइटेशन कम्युनिटी बनी हुई है, एक दूसरे को साइट करते हैं, क्रुगमन को साइट करते हैं, वो करते हैं आइडियाज़ उसके साथ मिल जाते हैं, वो क्रुगमन थीसिस है, वो जेफ्री सैक्स थीसिस है, वो लुकस थीसिस है, इस तरह बात हमारे यहाँ ये होता है?
देखिए हमारा काम काफ़ी अप्लाइड है और ये साइटेशन का हमारा भी बहुत सिग्निफिकेंट एक आप कह लेंगे मैकेनिज्म है, और दैट उसका जो एक एविडेंस है वो ये है कि आपको फिर इंटरनेशनल क्लब्स कितने बन रहे हैं, ग्रुप्स कितने बन रहे हैं, लिंकेजेस कितनी बिल्ड हो रही हैं, और उन लिंकेजेस से नॉलेज शेयरिंग के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं इसके ऊपर आपको इस वक्त अर्ज कर सकता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 130 के करीब इस वक्त इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं।
वेरी गुड।
तो वो सारी जो है वो एक्चुअली साइटेशन से बिल्ड होती है।
एक्सेलेंट।
नोबडी इज विलिंग टू वेस्ट हिज टाइम विद यू, वो साइटेशन से बिल्ड हो रही है।
बट यहाँ आपकी व्हाट अबाउट डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स?
डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स एक तो हमारी अपनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ तो यकीनन है, उसके अलावा हम हायर एजुकेशन कमीशन का फोरम भी यूज़ करते हैं, कुछ उसकी अच्छी एग्जांपल्स भी हम सेट करते हैं, मसलन हमारी इस वक्त रिसर्च पार्टनरशिप लम्स के साथ है। अच्छा, इस वक्त हमारी एक 2+2 डिग्री प्रोग्राम एग्री बिजनेस का IBS सखर के साथ है। अच्छा, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की सारे 8 हैं तकरीबन, उन सबका एक कंसोर्शियम भी है। फिर इंटर यूनिवर्सिटी जो ये कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स हैं इसमें मोस्टली ये मल्टी कैंपस इवेंट होते हैं कि हमारे पास कोई चल रहा है इंटरनेशनल इवेंट तो हम उसको दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करते हैं और वैसे वर्षा उनके पास अच्छा तो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये निज़ाम जो है काफ़ी रीजनेबली स्ट्रांग है।
मुझे एक बात दें, आप दूसरी तरफ चलते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ देख चलते हैं, स्टूडेंट्स पर गौर करें, एक एवरेज स्टूडेंट जब आपके पास आता है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो ग्रेजुएट करता है, आपकी प्लेसमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल इन टर्म्स ऑफ सक्सेस इन पुटिंग दम इन द जॉब मार्केट वो क्या है?
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जॉब मार्केट का मतलब सिर्फ ये समझा जाता है कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिली है, वो मिल नहीं सकती। सरकारी नौकरी जो है हमारी
किसी को तो नहीं मिल सकती,
सरकारी नौकरी उस नंबर से ग्रो नहीं की जिस नंबर से हमारी आबादी बढ़ी
भी नहीं सकती,
तो होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको मार्केट में विद स्किल भेजना है, उनको प्रिपेयर करना है कि वो जॉब सीकर तो हैं ही, वो कोशिश करें कि जॉब प्रोवाइडर भी बन जाए. उसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स पे फोकस करते हैं, हम जॉब फेयर लगाते हैं, जो हमारे मेजर एम्प्लॉयर्स हैं उनको हम
बुलाते हैं.
और कोई हार्डली कोई ऐसा दिन जाता होगा जब मेरे पास रेक्विजिशंस नहीं आती.
अच्छा.
जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री है उसके लिए फर्टिलाइजर आ रहा है, वो मिल्क वाले हैं, वो फूड वाले हैं, वो फ्रूट्स वाले हैं, वो टेक्सटाइल वाले हैं, इन सब के साथ डेयरी वाले हैं, जो पेस्टिसाइड वाले हैं, इन सब से ट्रैक्टर्स वाले हैं.
आपकी रिलेशनशिप है
उनके साथ? हमारी बड़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप.
अच्छा. इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू योर स्टूडेंट्स?
यस, वी डू द जॉब फेयर्स एंड दे आस्क अस व्हेन दे हैव जॉब अपॉर्चुनिटी.
एंड अच्छा, गुड गुड.
और एक और ये भी करते हैं कि इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स है, हम अपने इंटर्नी सारे जो हैं इन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के पास प्लेस करते हैं, तो उनमें जो अच्छे होते हैं उनको जॉब मिल जाते हैं. दूसरा हम ये करते हैं कि हम जॉब फेयर के अलावा बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सोचें अपनी बिजनेस जनरेशन का. कल मैं वहाँ सखर में था, तो वहाँ पे एक बच्चे ने अपनी केस स्टडी पेश की. उस बच्चे ने 200 रुपये शुरू किया था, अभी उसका 20 मिलियन का बिजनेस है विद इन 3 ईयर्स.
माशाल्लाह, इंप्रेसिव इंप्रेसिव. वेरी गुड.
200 रुपये से.
वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, ये बताएं कि कितने बच्चे आपके अनएम्प्लॉयड रह जाते होंगे एज अ परसेंटेज, रफली स्पीकिंग? आई नो आप एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, बट रफली
अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे पास कोई प्रिसाइज एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन के सर्वे भी होते रहते हैं. जो हमारे बच्चे जॉब्स में हैं उनकी हम एम्प्लॉयर से सर्वे लेते हैं और हमारे पास अच्छी फीडबैक है. अब देखना यह है कि क्या बच्चे हमने ट्रेन किया, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट ब्रीडर वो काम कर रहा है बैंक में, तो इसको आप गेनफुली एम्प्लॉयड कहेंगे या सिंपली एम्प्लॉयड कहेंगे, या हमारे पास किसी ने पीएचडी का केमिस्ट्री में और पढ़ाना शुरू कर दिया प्राइमरी स्कूल में, तो इस तरह की जब आप वेरिएशन देखेंगे तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो अनयूजुअल मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयड
कम है. अच्छा, एक्सेलेंट. मुझे बताएं, आपने अभी कहा कि आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है विद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आपके पास आते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, क्या ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या किसी तरीके से आपकी मदद करते हैं कि नहीं?
इंडस्ट्री के साथ जो इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप है वो बड़ी कॉमन है.
अच्छा.
वो करते हैं हमारे साथ, इवेंट्स मिलके करते हैं, और इवेंट्स हमारे पास जितने तवातर से हो रहे हैं लार्जली स्पॉन्सर्ड ही हो.
अच्छा, गुड.
तो और वो थोड़े नहीं है, सैकड़ों में है.
बट आपको वैसे नहीं करते?
तो वैसे जो होता है ना कि वो कमीशन रिसर्च हो
कि वो नहीं होती.
हाँ, नहीं, वो अभी उस लेवल पे काम नहीं जाता.
बट आपके पास एंडाउमेंट कोई है?
एंडाउमेंट हमारे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी इनसिग्निफिकेंट है. तकरीबन 1 बिलियन के है इस वक्त एंडाउमेंट, तो 1 बिलियन जो है वो कोई इतने बड़े इदारे.
अब फंडिंग की तरफ चले आ जाए इस पर. अब फंडिंग यूनिवर्सिटी कैसे करते हैं? सिर्फ आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है?
जी नहीं, हमारी फंडिंग 3 तरह की है. एक हमारी फंडिंग है जो जो मिनिमम रनिंग कास्ट है, उसके 2 कंपोनेंट है. उसका एक कंपोनेंट है जो फार्मूला ग्रांट अच्छी सी से आती है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसका मेजर फैक्टर,
ठीक है,
तो उसके ऊपर आती है. और दूसरी है कि उसको हम मैच करते हैं विद आर इनकम. उसमें हमारी इनकम फीस की भी है, बर्सरीज, फिर उसमें फार्म इनकम, कंसल्टेंसी, ओवरहेड चार्जेस, कमर्शलाइजेशन चार्जेस, ये जब हम सारे मिलाते हैं तो इस साल का मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारा 3600 मिलियन का रेकरिंग बजट है, जिसमें HEC की कुछ 1400 या 1500 मिलियन है, तो बाकी हमारी अपनी है. तो इसका मतलब हम तकरीबन 60% जो है वो.
फीस आपकी कितनी होगी?
हमारी फीस स्ट्रक्चर अभी बहुत थोड़ा है. हमारी फीस जो है वो एवरेज फीस आप कह सकते हैं 15,000 रुपये है एक सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की 30,000.
अच्छा, फीस आप बढ़ा नहीं सकते?
हम बढ़ानी चाहते भी नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए भी नहीं, इसलिए कि हमारा जो स्टूडेंट इनटेक है बड़ा स्पेशलाइज्ड है.
अच्छा.
रूरल है, डिसएडवांटेज्ड है, और उसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 30% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल एड मांग रहे हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से उनको फाइनेंशियली.
बट बाकी 70 को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उनको ज़्यादा?
ये यहाँ पर रिवाज नहीं है.
ये
रिवाज नहीं है
कि बना सकते हैं कि
डिफरेंशियल फीस रेट का रिवाज नहीं है. तो उसका फिर एक ऑप्शन उसकी निकाली हुई है कि हम कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स, वीकेंड प्रोग्राम्स करते हैं जिनकी फीस जो है वो रिलेटिवली हायर है, लेकिन एंड ऑफ द डे आर रेकरिंग कास्ट इज बीइंग मेट कंफर्टेबली. जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो एच ई सी से फार्मूला ग्रांट आती है वो 40% के करीब है। दूसरी जो फंडिंग आती है वो डेवलपमेंट की फंडिंग है, जैसे कि आप प्लानिंग कमीशन के PC1 हो गया, प्रोविंशियल PND का भी हो जाता है, तो वो तो डेवलपमेंट फंडिंग है। वो लार्जली दो दो तरह की है, एक है स्कॉलरशिप्स में और दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, हॉस्टल है, कोई लेबॉरेटरी है। तीसरी जो फंडिंग है वो है एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ का डिस्टिंक्शन, वो है कंपेटिटिव ग्रांट्स आप जो अर्न करते हैं और वो फैकल्टी करती है,
यू नो रिसर्च ग्रांट्स,
रिसर्च ग्रांट। तो हमारा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि डिस्टिंक्शन है वो पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के पास हमारे जितना बड़ा पूल कंपेटिटिव ग्रांट्स।
अच्छा,
इस वक्त हमारा कंपेटिटिव ग्रांट्स का नेशनल इंटरनेशनल जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 4 अरब का है।
वेरी नाइस, एक्सेलेंट।
यूनिवर्सिटियों की फीस की इनकम, चूंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनकी फीस की इनकम अदर इनकम हमसे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कंपेटिटिव ग्रांट्स की इनकम इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है।
अब इकरार साहब, दो फाइनेंसिंग स्कीम्स जो मैंने दुनिया में देखी हैं वो आपके पास हैं कि नहीं है? एक तो जो है कि आपकी 1906 से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आपका माशाल्लाह एलुमनाई बेस तो काफ़ी अच्छा होगा और दुनिया में फैला होगा, ठीक है? क्या वो एलुमनाई बेस, क्योंकि हार्वर्ड वगैरह उस एलुमनाई बेस को बहुत मिल करते हैं और बड़े अच्छे पैसे उनसे बनाते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
देखिए, हमने इस वक्त इवन 30 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन है, 300 के करीब बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। उसमें एक ग्रुप सैक्रामेंटो में बैठा है, एक टोरंटो में बैठा है, एक सिडनी में बैठा है, एक ग्रुप जो है वो कैमरा में बैठा है, तो इस तरह से दुबई में है ग्रुप, तो इस तरह से हमने नेटवर्किंग की है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल
इसमें पोटेंशियल
बहुत ज़्यादा।
अच्छा, बिकॉज आई थिंक वो आपका जो खासतौर पर आपके जैसे यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी तो और बात है, आपके जैसे यूनिवर्सिटी के पास बहुत पोटेंशियल होगा तो उसके अंदर हो सकता है। पर तीसरे जो मैं उस पर फिर आना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक तो फीस का हम तरीक़ेकार कोई नहीं दरियाफ्त करते, क्योंकि कोई फ्रेंकली मैं देखता हूँ आपका चलें फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं देखता हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस चले जाएँ, वहाँ बच्चा आ रहा है मर्सिडीज़ में भी और वहाँ बच्चा आ रहा है पैदल भी, और दोनों एक ही फीस दे रहे हैं, जिस पे तो मैं ज़रा थोड़ा सा
राइट, वो तो मेरे को मुफ्त पड़ रहा है,
ठीक है ना? तो वहाँ हम डिस्क्रिमिनेटरी फीस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
बेशक में किसी को ये करनी पड़ेगी,
ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि डॉक्टर जब माशाल्लाह बन जाता है डॉक्टर,
फिर काम नहीं करना चाहता,
वो बाहर भाग जाता है, बड़ी दूर भागे, मैं रोकना नहीं चाहता, जरूर भागे बाहर, बट मैं कहता हूँ वो, मैंने उनसे कहीं से बात की है बाहर, वो कहते हैं हम पैसे देने को तैयार हैं, हम उनसे पैसे क्यों नहीं लेते?
ये भी बात सही है आपकी, देख रहे हैं उनके ऊपर कम से कम 60 लाख रुपया लगा होता है,
हाँ,
और वो चुप करके चले जाते हैं,
हाँ,
पब्लिक का लगा होता है,
और अगर हम उनको 60 लाख का बॉन्ड दे दें और कहें भाई आप जब बन जाओगे स्पेशलिस्ट
दे दे
हमें 1,00,000 में 1,20,000 दे देना,
हाँ,
वो दे देंगे वापस, हाँ, वो तो हंस के दे देंगे, हाँ, पर हम यूज़ नहीं करते, तो ये एक चीज़ है। जो एक और बड़ी मजेदार फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो वेस्ट में आपने भी देखा होगा, हमने सब जगह देखा, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी ने उसको छोड़ दिया, हार्वर्ड को ले ले, हार्वर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है, अपनी छोटी सी ज़मीन, हार्वर्ड की ज़मीन बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है, उन्होंने उस ज़मीन को अच्छी तरह यूज़ करके शॉपिंग मॉल बना के, प्लाजे बना के, ये वो उन्होंने अपनी एंडाउमेंट उन दो तरीक़ों से, एक वो एक अलुमनाई बेस, उनकी एंडाउमेंट $60 बिलियन की हो गई है।
देखें, ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिसमें कुछ लीगल हिचेज हैं और कुछ हमारे कल्चरल हिचेज, जिस तरह की मेरी ये रियल स्टेट है यूनिवर्सिटी की, मुझे किसी से पैसा लेने की भी जरूरत नहीं,
बिल्कुल सही,
ये यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल सॉल्वेंट हो सकती है, बगैर गवर्नमेंट का पैसा लिए हुए ये लोगों को पे कर सकती है, लेकिन ये लैंड जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की है और यूनिवर्सिटी के पास इसको कमर्शलाइज करने के राइट्स नहीं,
बिल्कुल सही।
एक तो ये लीगल इशू है, दूसरा इशू ये है कि अगर हम इसको परसू करेंगे तो हमारा कल्चर ऐसा है, कहा जाएगा कि हमारा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई ना कोई मैनिपुलेशन का एलिमेंट कहीं से एंटर होगा, जो फिर आपके लिए मुश्किल।
तीसरा मुझे ये डर भी लगता है,
हाँ,
कि जब आपने हाथ लगाया इस चीज को तो कब्जा ग्रुप ने आके आपके हाथों से ही ले छीन ले। तो मैं ये चाह रहा था, जो मैं प्लानिंग कमीशन में था, मैंने एजीसी से कहा भी था कि हम कोई लॉ पास करें, ऐसा निज़ाम बनाएं कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन किसी कब्जा ग्रुप के हाथ में ना आए, येट आप कमर्शियल पोटेंशियल निकाल सके। मैं नहीं कहता कि मुझे कोई बड़ा आसान इसमें सोच कोई मेरे पास है तरीका कि कर सकता हूँ, बट इस पर हमें सोच की ज़रूरत है, क्योंकि
अगर गवर्नमेंट तहिया कर ले तो ये नामुमकिन नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी को एक पैसा कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे एक पैसा मांगने की जरूरत नहीं है,
किसी यूनिवर्सिटी को भी नहीं है।
जो जड़ी
सर नर्स देख ले, एक स्क्वायर माइल है,
बिल्कुल
वो देखे कहते हैं यूनिवर्सिटी 1700 एकड़ है, ठीक है, हमारी तो जमीन इतनी रिच है, मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ आपको इतनी एंडाउमेंट मिली हुई है कि आप इसको यूज करें, ठीक है ना, पर आपकी बात सही है, निज़ाम बनाने की जरूरत है, निज़ाम हम कैसे बनाएंगे इसके ऊपर सोच की जरूरत है। अच्छा चौथा पहलू आ जाए कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रोफेसर ढूंढना आसान काम है आपके लिए, रिक्रूट करना आसान काम है?
नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, अगर आप वाकई क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर।
क्या रुकावटें?
पहले तो कैंडिडेट्स की सप्लाई नहीं है, देखिए ना ये नॉलेज ग्रोथ जिस तरह से हुई है उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उस स्पीड से ट्रेन नहीं हुआ। फिर हमने काफ़ी आर्काइक किस्म का निज़ाम था, ये टाइट जैकेट्स में डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन को बांट दिए, नॉलेज तो इस तरह से ग्रो नहीं करता। अब मुझे अगर बंदा चाहिए जो जिसको इंटीग्रेटिव साइंस आती हो तो वो या बॉटनिस्ट है या वो जूलॉजिस्ट है या वो केमिस्ट है या वो फिजिस्ट है, मुझे तो इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का बंदा चाहिए। मुझे इस तरह से इंजीनियरिंग में आप आ जाए, वो या सिविल इंजीनियर है या वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मुझे बंदा चाहिए जो सिविल और मैकेनिकल को दोनों को मिला के मेरे लैंड के मैनेजमेंट के इश्यूज के ऊपर काम कर सके। तो ये हमने एक तो पहले इनके ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो हुई नहीं। अच्छा जो HEC का निज़ाम था जो इन्होंने PhDs में इन्वेस्ट किया था वो पार्शली सक्सेसफुल रहा है, उसमें से हमें मिली है बड़ी रीजनेबल शेयर, हमारे पास तकरीबन 250 PhD अब ऐसा है जो उस निज़ाम से आया है, लेकिन दे आर वेरी यंग, वो प्रोफेसर बनने के लायक नहीं, तो सिस्टम प्रोफेसर है, तो यस वो राइज कर जाएंगे प्रोफेसोरियल।
नहीं पर मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ कि अमरीका ने जो किया है, अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप भी गए, मैं भी गया हूँ और जाते भी हैं, देखते भी हैं, क्या मैं गलत हूँ कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ सारे प्रोफेसर अमेरिकन हैं?
ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप इसको आप कंपेटिटिव करें, आप ग्लोबल सैलरीज दें तो आप ले लें, मैं खुद बाहर रहा हूँ वहाँ पे,
खुद पढ़ाते रहे,
40-45 कंट्रीज के लोग एक 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 कॉलेज में मौजूद थे, तो ये अगर हम इसको इतना कंपेटिटिव बना लें
और हमारे अच्छे बंदे वहाँ जाके पढ़ाते हैं, हम उनको वापस क्यों नहीं ले आते?
बिल्कुल, हमारा बहुत बंदा बाहर है,
ठीक है, बड़े बड़े हम वापस क्यों नहीं ले आते? तो मेरा तो ये ख्याल है कि अच्छा दूसरी चीज में मुझे बात बताएं जो मैं पहले भी पूछा था आपसे कि चले आप अगर उनको फुली ला भी नहीं सकते तो आप विजिटिंग प्रोफेसर क्यों नहीं ला सकते कि भाई एक टर्म के लिए आ जाए?
हम विजिटिंग प्रोफेसर, वैसे हमने तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में गुंजाइश है, हम अच्छा। विजिटिंग प्रोफेसर ले रहे हैं
अच्छा।
और दूसरा कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जो शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों को स्पॉन्सर भी कर देते हैं, हम अपने रिसोर्सेज से भी स्पॉन्सर कर देते हैं अगर बहुत अच्छा एलिमेंट हो, लेकिन मोस्टली मैंने देखा वो लोग उस वक्त आते हैं या आना चाहते हैं जब वेकेशन कर लेते हैं,
बिल्कुल सही,
सो दे वांट टू कम हियर फॉर वेकेशन और वेकेशन में वो एक पंथ दो काज,
ठीक,
लेकिन अगर वो पूरी ओनरशिप के साथ आना चाहें तो ये अरेंजमेंट अवेलेबल है और इसके लिए हमें किसी के पास जाने के लिए, ये तो सिंडिकेट ने एम्पावर किया हुआ, मुझे मेरे पास अरेंजमेंट अवेलेबल है और हम उसको रीजनेबली कॉम्पनसेट भी करने को।
ये बताएं कि जब प्रोफेसर आप हायर करते हैं तो जो हमारी हुकूमती गाइडलाइंस हैं उसके अंदर क्या आपको कोई एडवर्टाइजमेंट कोई निज़ाम ऐसा फॉलो करना पड़ता है जिसके अंदर अच्छे बंदे नहीं आते?
वो निज़ाम अभी भी रिस्ट्रिक्टिव है, मसलन प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है,
गवर्नमेंट अप्रूव करती है, आपने
हाँ जी वो गवर्नमेंट
आप फाइल बना के भेजते हैं,
फाइल बना के भेजते हैं, तो ये अगर मैंने
ये कितने मुल्कों में विकास साहब
इस यू नो वहाँ हर प्रोफेसरशिप की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, वो डिपार्टमेंट लिखती है, सिंडिकेट या
डिपार्टमेंट खुद ही अपॉइंट करती है,
खुद लिखती है, डिपार्टमेंट बैठ के लिखती है कि हमें बंदा जो चाहिए इस वक्त हमारी यहाँ पे हम 10 बंदे काम कर रहे हैं, हमारे दरमियान ये डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी के मुताबिक वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो एडवर्टाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, मुझे गवर्नमेंट पे भी कोई इतराज़ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उसको सेक्शन अफसर इतना मैनुपलेट करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं, इतनी डिले करते हैं कि हमने कई क्वालिफिकेशन भेजी हुई हैं कई साल साल से उनका जवाब ही नहीं आता।
नहीं सर इसमें ज़रूरत क्या है? देखिए ना मैं ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज तो देखता हूँ, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज उठा के हमारे बंदे यहाँ से ले जाते हैं, हार्वर्ड वाले हमारे बंदे यहाँ से लेके जाते हैं, टिकट दे के लेके जाते हैं, ठीक है, और इनवाइट करते हैं खुद उनको, तो हमने खुदारा इस सिस्टम में इतने रुकावटें क्यों डाली हुई हैं? हमें हमारे पास जब प्रोफेसर मौजूद हैं तो हम क्यों नहीं उनको अच्छी तरह हायर करते? दूसरी मैं देखता हूँ क्या हमारे यहाँ, मुझे एक और बात बताइए जो मुझे बड़ी इंट्रीग होती है, हमारे यहाँ क्या सर्च कमेटी का इस्तेमाल ठीक होता है?
पहले पार्ट का जवाब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्ट में प्रोविजन है कि स्टैचूस बनते हैं हर पोस्ट के, चपड़ासी से लेके प्रोफेसर तक, वो स्टैट्यूट्स जो वो अप्रूव गवर्नर साहब करते हैं और गवर्नर साहब अप्रूव करते हैं थ्रू दी प्रोसेस। तो वो तो एक्ट जब तक अमेंड नहीं होगा ना, हम कोई किसी जॉब की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते।
तौबा।
तो ये
और अब जब डिपार्टमेंट अगर नया बनाना, लेट सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। मैंने खुद देखा मेरे सब्जेक्ट कितना चेंज हो गया, जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी इतना चेंज हो गया, अब चार डिपार्टमेंट बन गए एक के बजाय।
डिपार्टमेंट क्रिएट करने की पावर एकेडमिक काउंसिल के पास है।
अच्छा,
कर देती है क्रिएट, बंद भी कर सकती है, खोल भी सकती है। लेकिन उसमें अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो फिर वो स्टैट्यूट बनेंगे,
तो बात तो वही होगी ना फिर आपस के।
तो ये इस तरह के मिसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी के स्टैचुटरी बॉडीज़ पे छोड़ देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की स्टैचुटरी बॉडी जो है वो वेरी वेल रिप्रेजेंटेड है, गवर्नमेंट मौजूद है उनमें।
नहीं, ये इस पर मैं आना चाहता हूँ, गवर्नमेंट क्यों मौजूद है। मैं देखता हूँ बाहर, हार्वर्ड के ट्रस्टीज मैंने देखे हैं, मैंने ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज के लोग देखे वगैरह, वहाँ तो गवर्नमेंट नहीं मौजूद। अब मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे गवर्नमेंट से कोई इख्तिलाफ है, मैं खुद वाइस चांसलर जब पीएचडी का था मुझे हैरानगी ये थी कि चार सेक्रेटरी मेरे बोर्ड पे थे। ठीक है जी, अब वो सेनेट जो सिंडिकेट आप
बिल्कुल ऐसे ही है सब में।
मैंने उसको फ़ोन किया, एक सेक्रेटरी एजुकेशन को जानता था, मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई आपको पता है कि आप मेरे बोर्ड पे हैं या सिंडिकेट व्हाटएवर जो भी। मुझे कहता है वो क्या होता है। मैंने कहा यार मेरा यही तो मतलब है, अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं, आपको पता भी नहीं, तो मेरी तो मीटिंग रुकी बैठी है क्योंकि आप अवेलेबल ही नहीं है,
गौरव नहीं बनता
हूँ ये ना। तो मसला ये है, फिर आप आते हैं तो आप जल्दी में होते हैं, मुझे तो बंदे चाहिए जो कि यहाँ टाइम लगा सकें और हमारी डिसीजनें अच्छी तरह देखें। मैं तो खुद चाहता हूँ मेरा निज़ाम ऐसा हो कि मेरी देखभाल की जाए, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा निज़ाम ना हो। मैं तो चाहता हूँ अच्छा सिंडिकेट, अच्छा सेनेट हो, बट वो ऐसे बंदे हो जो यूनिवर्सिटी का मुफाद चाहते हो, जो हमारी काम को आगे बढ़ाएं समझे, वो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता।
तो एक्ट कानून तो पार्लियामेंट
ये जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं ये कौन बनाता है?
प्रोविंशियल असेंबली।
नहीं मतलब आपका इसमें हाथ नहीं होता?
नहीं, ये प्रोविंशियल असेंबली एनैक्टमेंट का प्रोसीजर ये है कि एक लॉ डिपार्टमेंट है
वो बना लेता है,
वो बनाता है और वो फिर कैबिनेट की रिकमेंडेशन में प्रोविंशियल असेंबली को जाता है।
और आप लोगों का क्या, आई मीन आपको ऑटोनॉमी किस हद तक है? क्योंकि मैं कई यूनिवर्सिटी से सुनता हूँ कि जनाब जो ये सेक्रेटेरिएट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में कुछ थोड़ा बहुत फिर भी हाथ रखना चाहते हैं और रन करना चाहते हैं वगैरह।
हमारे को डे टू डे आइटम्स बिजनेस है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन ये जो उसके होते हैं पॉलिसी डिसीजन या जो फंडिंग के मैकेनिज्म है या ये जैसे स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से।
बट ये इसमें मतलब आपको दिक्कत आती है, यू फील के दिस इज, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए, ठीक है, अगर हम अच्छे वाइस चांसलर अपॉइंट करें, फुल ऑटोनॉमी दे दें उन्हें और निज़ाम बने, मैं ये नहीं कहता ऑटोनॉमी को डिस्क्रिप्शन दें, निज़ाम बने, अच्छे ट्रस्टीज़ हों, अच्छे सिंडिकेट्स हों, अच्छे सेनेट्स हों, अच्छे यू नो वगैरह टीचर्स कमिटीज़ वगैरह वगैरह हों, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स को भी ऑटोनॉमी हो, क्या सिस्टम बेहतर नहीं होगा?
देखिए अगर आप सिंडिकेट को या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको मजीद एम्पावर कर दें, इफेक्टिव कर दें और वाइस चांसलर को ऑटोनॉमी दें, तो वो एक आप कह लें कि मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का निज़ाम क्रिएट हो सकता है वहाँ से, और फिर वो ज़्यादा इंटरेक्टिव और डायरेक्ट होगा बजाय इसके कि हम फाइलें घुमाते रहें। अच्छा, दूसरा बात यह कि गवर्नमेंट की दिक्कत की आपने बात की, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। मुझे फ्रैंकली प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ।
अच्छा,
मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन व्हेन यू गो बाय दी फिलॉसफी ऑफ वर्किंग दैट वे तो मैं उसको समझता हूँ कि ये कम्बरसम है। मुझे फैसलाबाद से बैठे हुए लाहौर इस्लामाबाद जाना कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इस मुल्क में जो निज़ाम है वो परसुएशन हो तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो हम परसुएशन करते हैं तो काम।
पर आपका कितना टाइम लग जाता है उस तरफ?
उसके लिए टाइम देना पड़ता है,
टाइम देना पड़ता है,
बिल्कुल,
यानी काफी टाइम
एफर्ट करना
लग जाएगा। इधर आपका टाइम बढ़ जाएगा तो वो प्रॉब्लम,
एफर्ट करनी पड़ती है,
एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये लेट्स से अगर इफ यू हैड योर विशेस, लेट्स आस्क यू एन ओपन क्वेश्चन एट द एंड, इफ यू हैड योर विश आप क्या चेंजेस चाहेंगे यूनिवर्सिटी के निज़ाम रन करने में, यूनिवर्सिटी के तरीक़ेकार बनाने में? जो आपने तीन मुझे वफाद बताए थे बड़े इंपॉर्टेंट, टीचिंग लर्निंग और नॉलेज, जो आपने तीन ऑब्जेक्टिव बताए थे,
बिल्कुल,
और एक इकोसिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड नॉलेज बनाने में, आप क्या चाहेंगे नई चीज़ें करना?
देखिए मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा एक सोशल कम्प्लेक्स है उसमें यूनिवर्सिटीज़ को जो है अकेले छोड़ दें। अब जब हम ये बात करेंगे जाके किसी डिसीजन लेवल पे, तो हमें फौरन वर्स्ट एग्जांपल्स सामने रखते हैं।
तो हर जगह होते हैं,
तो वर्स्ट एग्जांपल्स हमने ही, हम में से लोगों ने सेट किए हैं,
और कुछ बच्चे फेल होते हैं हमेशा,
वो एग्जांपल सेट की हुई हैं, और कुछ लोगों ने मिसयूज ऑफ पावर किया हुआ, हमारे साथियों ने, हमारे कुलीग, वो मिसयूज ऑफ पावर टेबल पे आ जाता है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, हम मैचोरेशन प्रोसेस में, इवॉल्विंग एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, तो शायद विद ड्यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इतने मैच्योर हो जाएंगे कि ये इकोसिस्टम जो है ये ट्रूली इंटरेक्टिव, ऑटोनमस, और आप कह लें कि कटिंग एज हो सकता है। अभी इसमें कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसको आप कहेंगे वो एलिमिनेट हो तो ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शन भी हैं। हमें कुछ ग्रांटेड इनकम वहाँ से सपोर्ट आती है, या तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया और हमें पीएनडी में या प्लानिंग कमीशन में नहीं जाना, तो फिर हम कहेंगे ठीक है, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो लैंड है वो हमारे पास में नहीं है जिसको हम कैपिटलाइज कर सकें, तो इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन फिर भी कुछ माइनर चीज़ें हो सकती हैं, मसलन अपार्टमेंट्स, जो की अपार्टमेंट्स हैं, की अपार्टमेंट्स का जो निज़ाम है या जिस तरह जो स्टैचूटरी निज़ाम है, इसको रिविजिट होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए,
रिविजिट। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में डीन्स की अपार्टमेंट जो है वो, और ट्रेजरर की अपार्टमेंट वो गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे 4 साल से ट्रेजरर नहीं लग सका।
इंटरेस्टिंग,
ठीक है। मैंने कई दफ़ा पिछले 5 साल में देखा कि डीन की फाइल जो 2-2 साल जो है वो शटल होती रहती है। रीज़न उसकी ये है कि वो एक यहाँ निज़ाम है, तीन बंदों का नाम जाता है, तीनों के घोड़े भागने शुरू हो जाते हैं।
कौन जाके अप्रूव करता है इसको? सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अप्रूव करता है या कौन अप्रूव करता है?
गवर्नर तक जाते हैं।
गवर्नर तक जाती है?
हाँ जी, गवर्नर तक जाती है। हालांकि ये डीन जो है या ये जो रजिस्ट्रार टाइर है, ये तो बाई चांस कैबिनेट है, तो लेट हिम चूज हिज कैबिनेट, या आप फिक्स कर दें कि इस ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर रैक लगा लें, बाई चांस ना लगाए सिंडिकेट लगा लें।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये अमेंडमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए।
दुनिया में निज़ाम है जी कि जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई बोर्ड करता है,
बोर्ड करता है,
ठीक है,
बोर्ड करे,
वाइस चांसलर का या जो सीईओ है उसका राइट है टू प्रपोज,
वो प्रपोज करेगा
और बाकी वो अप्रूवल होती है। वो निज़ाम हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अच्छा, मुझे 2 और बातें बता दें। क्या आप मुतमईन हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके साथ, क्या वो अच्छी तरह सेलेक्टेड है लोग, क्या उस पर अच्छे लोग हैं?
मुझे मुख्तलिफ गवर्नर
आपकी नहीं बात कर रहा, बाकी दुनिया बात
मुझे मुख्तलिफ गवर्निंग बॉडीज में जाने का मौका मिला, तो अपनी भी गवर्निंग बॉडी है, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है।
अच्छा ठीक।
तो जो मेरे पास कंपोजिशन है वो काफ़ी मच्योर है,
अच्छी है,
अच्छी है, और वो बिल्कुल जो है आप कह लें कि वो 3 साल के लिए आते हैं, उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनी भी होते हैं, उसमें HEC के नॉमिनी भी है, उसमें हाईकोर्ट का जज है, और उसमें प्रोविंशियल असम्बली का एक नॉमिनी है।
हाई कोर्ट का जज क्यों है?
वो हमारे लॉ में है।
तो हाई कोर्ट का जज आता है मीटिंग पे?
अक्सर आते हैं,
अक्सर आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं,
इंटरेस्ट लेते हैं।
अच्छा, माशाल्लाह।
तो ये, लेकिन ये सब में नहीं।
मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैंने अपने बड़े पढ़े लिखे दोस्तों से, माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे कई मिल जाते हैं लोग लाहौर में, PhDs भी हैं, उस्ताद भी हैं, वगैरह वगैरह हैं, उनसे मैंने कई दफ़ा पूछा, भाई आप किसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे हैं या एडिटर्स हुए हैं? वो अक्सर कहते नहीं। अब ये क्या वजह है कि हम, जब मैं वही सवाल अगर किसी वलायती यूनिवर्सिटी या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पूछ, सॉरी बंदों से पूछूं जो अच्छे पढ़े लिखे वेल नोन नामवर लोग हैं, तो वो हमेशा कहते हैं हम भी मैं फलानी जगह बैठा हूँ या फलानी जगह बैठा हूँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता ये?
या बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये जो बोर्डों पर बंदे नॉमिनेट होते हैं, इसका को प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो कहाँ से लिस्ट जनरेट होती है? अच्छा, हमारे यहाँ यूजली ये होता है कि हम एक लंबा पैनल भेजते हैं, यानी 3 स्लॉट्स हैं, तो हम मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स के 10-12-15 नाम भेज देते हैं, तो फिर कई दफ़ा उनमें से हो जाते हैं, कई दफ़ा कोई और भी आ जाते हैं।
पॉलिटिकल अपॉइंटीज भी आ जाते हैं?
मैं उनको पॉलिटिकल इसलिए नहीं कहूँगा कि वो जनरली प्रोफेशनली
प्रोफेशनली गुड गुड गुड, ये तो अच्छी बात है। ये बताइए एक और चीज़, वाइस चांसलर्स में अगेन मैं देखता हूँ कि जो कई बंदे जिनको मैं जानता हूँ, जिनको वाइस चांसलर की सिलेक्शन होनी चाहिए, जिनको अच्छी प्रोफेसर्स की सिलेक्शन होनी चाहिए, मैं उनके साथ कई दफ़ा जोक भी करता हूँ, भाई तुम्हें कभी ऑफर आई है? वो कहते नहीं। अब क्या इसकी क्या वजह है? जाके हमारे वाइस चांसलर वाकई इतने अच्छे हैं कि जो बाहर बंदे बैठे हैं उनसे बहुत सुपीरियर हैं?
देखिए, ये प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है अभी। आज से 8-9 साल पहले तक किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कोई सेट प्रोसीजर नहीं था।
ठीक।
एक्ट में सिर्फ लिखा हुआ था कि वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चांसलर ऑन सच टर्म, और कोई प्रोसीजर नहीं था। हमने देखे कि लोग सीनियरिटी से भी लग गए, हमने ये भी देखा कि लोगों सुबह सवेरे पता चला फलां वाइस चांसलर कहीं से आ गया है, और वो क्यों आ गया, वो कैसे आ गया, क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी, क्या प्रोसेस हुआ, किसी को नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद HEC ने एक वाइस चांसलर की जनरल डिस्क्रिप्शन बनाई कि ये एक लीडरशिप पोजीशन है, इस लीडरशिप पोजीशन के लिए आपको जो प्रोसेस है वो ओपन करना चाहिए, और ओपन करने के बाद कोई एक सर्च कमेटी बनाई जाए जो उस ओपन प्रोसेस में से पैनल पिक करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करे। ये पहले तो सिर्फ HEC की रिकमेंडेशन थी, फिर 2013 में गवर्नमेंट ने बकायदा अमेंडमेंट करके इस रिकमेंडेशन को अब ला कैसे बना दिया। अंटिल 2013 इट वाज जस्ट HEC's रिकमेंडेशन, नाउ इट्स लॉ कि आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करके लगाएंगे। अब ओपन करके लगाने के दरमियान जो प्रोसेस है इसके ऊपर अभी मैं समझता हूँ कि एवोल्यूशन और होनी चाहिए।
अब जो मुझे नज़र आता है कि मैंने अखबार में इश्तिहार एक दफ़ा देखा, 6 वाइस चांसलर्स इकट्ठे, अजीब अजीब उनकी एजेस लिखी हुई है, अजीब अजीब उनकी टर्म्स लिखी
हुई है, एज लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है PhD सब्जेक्ट में हो, तो वाइस चांसलर PhD सब्जेक्ट में होना को जरूरी तो नहीं।
क्या
तो वाइस चांसलर तो एकेडमिक भी हो सकता है, वो नॉन एकेडमिक भी हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, वाइस चांसलर इज जस्ट लीडर, मैनेजर, इंस्पायरर, वाइस चांसलर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड, उसने पढ़ाना थोड़ी है।
मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जो प्रेसिडेंट है वो फार्मर गवर्नर ऑफ एरिजोना है। अच्छा, मैं वहाँ पे मैसी यूनिवर्सिटी गया हूँ पिछले साल न्यूजीलैंड में, उसका जो वाइस चांसलर है वो फार्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है। वहाँ पे मैं लिंकन यूनिवर्सिटी गया हूँ तो उसका जो वाइस चांसलर फार्मर किसी बैंक का प्रेसिडेंट है। तो ये इसको मेरे ख्याल में अभी भी मजीद इसमें एवोल्यूशन होने की जरूरत।
और जो प्रोसेस है वो अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, उसके बाद वो सेक्रेटरी साहब लिस्ट बनाते हैं और फिर कोई इंटरव्यू कमेटी होती है। क्या ऐसे दुनिया में वाइस चांसलर सिलेक्ट होते हैं?
नहीं, डेवलपर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उसके नंबर लगाए जाएं कि मैट्रिक कितने नंबर, FSC कितने नंबर, और पहले पेपर कितने नंबर और दूसरे पेपर। अभी तो इसके ऐसे उनकी स्कोरिंग करते हैं। ये स्कोरिंग जो है ये मैं समझता हूँ कि बौना निज़ाम है। वाइस चांसलर की आप ऐसे क्या स्कोरिंग करेंगे? वाइस चांसलर का प्रोफाइल आप ज़रूर देखेंगे ऑब्वियसली, और फिर सर्च कमेटी जो है वो इतनी मंजी हुई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सर्च कमेटी में अच्छे लोग हैं,
पर वो काम भी तो करें ना सर्च कमेटी।
अब मैं अच्छे लोग हैं, लेकिन अब उनकी सर्च कमेटी की ऑप्शन जो है वो लिमिट कर दी गई हैं ये बौने नंबर लगा के।
अच्छा।
तो ये एक तो अगर इफ आई हैव माई वे, एक तो मैं ये चाहूंगा कि ये नंबर लगा के वाइस चांसलरों का पैनल सर्च कमेटी के सामने पेश ना करें। सर्च कमेटी के लोग जो है वो मंझे हुए लोग हैं, या अगर और ढूंढे आप सर्च कमेटियां अच्छी बनाएं और भी स्ट्रांग सर्च कमेटियां बनाएं। और ये भी बहुत अजीब लगता है कि आपने 6 वाइस चांसलर की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, और उनके एक के आगे लिख दिया PhD इन सोशल साइंस, और दूसरे के आगे लिख दिया PhD इन वेटनरी साइंस, और तीसरे का लिख दिया PhD इन मेडिकल साइंस, और चौथे के आगे लिख दिया PhD इन इंजीनियरिंग साइंस। ये भी मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी छोटा काम।
फिर ये जो इंटरव्यू होता है, मैंने तो कभी दोनों वाइस चांसलर देखे, ये बड़ा एक रुतबा होता है। ठीक है, वाइस चांसलर तो खुदा के वास्ते एक सोसाइटी का टॉप रुतबा होता है, मैं तो कहता हूँ सेक्रेटरी से भी ऊपर रुतबा है। वाइस चांसलर को आप इंटरव्यू कर रहे हैं
15 मिनट के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप बैठे ना उसके साथ 2-3 दिन, उसको इन्वाइट कर लें, या
सब दुनिया में होता है उसको बुला के कहते हैं टॉक दो, खाना खिलाते हैं, उसको क्लब में रखते हैं, उसके साथ शाम को गपशप लगाते हैं, सारी फैकल्टी उससे मिलती है, वो एक किस्म का इंटरव्यू होता है, पर एक इज्जतदार तरीके से इंटरव्यू होता है और एक सोच समझ का इंटरव्यू होता है,
उसमें बड़ी डाइवर्स फीडबैक आती है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बताइए क्या सब कोई और आप इसमें इशू रेज करना चाहेंगे?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन सेक्टर जो है इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज आई है, बड़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और अभी जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई है उसको मैचुरेशन की तरफ ले जाने के लिए अगर एक ही आइटम में मेजर इन्वेस्टमेंट होनी है तो वो पहले ह्यूमन रिसोर्स में होनी चाहिए, वी शुड हैव गुड फैकल्टी। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं वो वक्त के साथ वेट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और अच्छी फैकल्टी नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटीज जो है वो बनने में बहुत देर लगेगी, बनेगी नहीं, क्योंकि फिर जब तक आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ढूंढेंगे उस वक्त तक पिछला बैगेज बहुत आ गया होगा।
एक्सलेंट डिग्रा साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी रोशनी डाली है यूनिवर्सिटीज़ पे। मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने तरक्की तो की है और करते भी रहेंगे, और माशाल्लाह हमारे पास 175 यूनिवर्सिटी हो गई हैं, कुछ आपके जैसी बहुत अच्छी हैं कुछ, पर मैं कहता हूँ ये भी एक नेचुरल फिनोमेनन है, हर बंदा एक्सीलेंट नहीं होता। आपने बेल कर्व की बात की, यूनिवर्सिटीज बेल कर्व होती है, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, हमें बुरे से एग्जाम्पल लेना चाहिए, हम अच्छी से एग्जाम्पल लेना चाहिए, ठीक है जी, और अच्छी यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करें। अमरीका में आप देख लें, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज बुरी भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, उनकी दुनिया में हमारे से कई यूनिवर्सिटीज हमारे से भी खराब हैं,
सही बिल्कुल,
ठीक है, और कई बहुत अच्छी हैं। हमें भी वैसा निज़ाम बनाना चाहिए, और आपकी बात बिल्कुल बजाय, हमें गौर करना चाहिए फैकल्टी की तरफ, हमें गौर करना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की तरफ, हमें गौर करना चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट की तरफ। अच्छे लोग यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स में आए, अच्छे लोग वाइस चांसलर्स हैं, अच्छे प्रोसीजर्स बने, इंडिपेंडेंस दी जाए ना सिर्फ वाइस चांसलर्स को, डिपार्टमेंट्स को, फैकल्टीज को। यूनिवर्सिटी तो एक बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है सर, दुनिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट्स देखते ही नहीं प्रेसिडेंट की तरफ वगैरह वगैरह, आप एक निज़ाम चलाना होता है। तो आपने बात बड़ी अच्छी की, बड़ी पते की बात है कि आपका जो सिस्टम आपने बनाया, नॉलेज लर्निंग टीचिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। आपने जो इकोसिस्टम की बात की बिल्कुल सही है, ये इन चार लफ्ज़ों पे अगर मैं अच्छी तरह गौर कर ले तो मेरा ख्याल बहुत निज़ाम बढ़ जाएगा। इकरार साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आई एम डीपली इंडेबटेड टू यू, खुदा हाफिज़।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।